अध्याय 8, आंतरिक परिवर्तन काल 1853 से 1894 ईस्वी तक। सम्राट की पुनर्स्थापना से चीन के साथ युद्ध तक प्रशासन का पुनर्गठन 1868 से 1894। शोगुन तंत्र की समाप्ति के साथ ही एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इसके बाद जापान की सरकारी नीति थी राष्ट्र का पाश्चात्य आदर्शों के अनुकरण पर सुधार। जिन नेताओं ने सम्राट की पुनः स्थापना में योग दिया था, वे विदेशियों को जापान में प्रवेशाधिकार देने के पक्ष में थे। उनकी सलाह से राजा ने शोगुन द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों के साथ की गई संधियों का निर्वाह करने और विदेशी राष्ट्रों के साथ जापान के संबंधों पर सीधा अपना निरीक्षण रखने की घोषणा की। अंतिम शोगुन के त्यागपत्र देने से केवल 8 मास पूर्व ही वहां के सम्राट कोमेई का देहांत हो गया। यद्यपि वह युवक ही था, किंतु प्राचीन व्यवस्था पर उसकी निष्ठा थी, और जहां तक उसकी व्यक्तिगत सम्मति का संबंध है, वह विदेशियों का घोर विरोधी था। उसका उत्तराधिकारी मेजी, मेजी नामा वस्तुतः उसके शासन को दिया गया नाम था, किंतु उसका अपना नाम मुत्सुहितो था और प्रायः इसी नाम से उसका विदेशी पुस्तकों में उल्लेख मिलता है। जब राजगद्दी पर बैठा तो उसकी आयु केवल 14 वर्ष की थी, इसलिए उसका अपने सलाहकार मंत्रियों से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। जैसे ही उसने प्रौढ़ावस्था में प्रवेश किया, उसने नए युग के आदर्शों को शोत्साह स्वीकार कर लिया। यद्यपि उसके राज्य की प्रगति का मुख्य श्रेय उसकी सलाहकार परिषद को है, लेकिन प्रगति विरोधी प्रवृत्तियों से उसने उनके कार्य में बाधा नहीं डाली। वह अत्यधिक अध्यवसायी, व्यवहार कुशल एवं संयत रूप से प्रगतिवादी था। सलाह स्वीकार करने तथा अपने मंत्रियों के सहयोग से काम करने में उसकी निर्णय क्षमता इतनी अद्भुत थी कि कभी-कभी यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि राज्य की नीतियों पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव कितना है। अगर वह व्यवहार कुशल एवं संयुक्त होने की बजाय अधिक निरंकुश होता, तो वह राष्ट्र की प्रगति में सहायक न होकर भारी व्यवधान ही सिद्ध होता, और फलस्वरूप उसके शासन काल का इतिहास इससे नितांत भिन्न होता। पश्चिमी जागीरों का शोगुन के पतन में महत्वपूर्ण हाथ था, और आरंभ में इसका मुख्य कारण विदेशियों के प्रति उनकी घृणा की भावना थी। लेकिन कालांतर में उन्हें यह विश्वास हो गया कि पश्चिमी राष्ट्रों के लोगों को देश से बाहर निकालना संभव नहीं है। इस सम्मेलन में सत्सुमा और चोसू दो प्रधान शक्तियां थीं। विदेशी नौसेना के उनके प्रति उग्र व्यवहार से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्हें यह अनुभव हो गया था कि चाहे वे इन असभ्य विदेशियों को कितना ही नापसंद करें, उन्हें जापान से बाहर निकलना संभव नहीं है, और उनका मुकाबला केवल उनके ही साधनों से किया जा सकता है। इसलिए वे पाश्चात्य तौर तरीकों के पूरी तरह से कायल हो गए, और उन्होंने अपनी सेनाओं को आधुनिक शस्त्रों से लैस कर दिया। संभवतः वहां इस समय प्रत्येक परिवार के नेताओं के मन में किसी नवीन प्रकार के संशोधित शोगुन तंत्र में तोकुगावा के स्थान पर अपने परिवार को प्रतिष्ठापित करने का विचार पैदा हुआ हो। परंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उन्हें यह अनुभव हो गया कि प्राचीन व्यवस्था को पुनर्जीवित करना संभव नहीं। इसलिए शासन के नियंत्रण का प्रयोग किसी अन्य प्रणाली से करना होगा। पश्चिमी जागीरों के अनुयायियों के अलावा दक्षिण की दो जागीरों क्यूसू स्थित हिजेन तथा सिकोकू स्थित तोसा के अनुयायियों का नई शासन व्यवस्था से प्रभुत्व था। यद्यपि उनका यह प्रभुत्व उतना व्यापक न था जितना तोकुगावा का प्राचीन शासन व्यवस्था में था, लेकिन वे कई वर्षों तक अपना आधिपत्य बनाए रहे। उनका लंबे अरसे से स्थल एवं नौसेना पर नियंत्रण था, और राष्ट्रीय परिषद में उनका बोलबाला था। शोगुन तंत्र का अंत हो चुका था, और इसके बाद राष्ट्रीय कार्यों का संचालन नए युग के साधन नौकरशाही व्यवस्था अर्थात मंत्रिमंडल तथा प्रवर राजमर्मज्ञों द्वारा ही किया गया। प्रशासन का केंद्रीयकरण युवक सम्राट का सभी आमूल परिवर्तनवादियों ने समर्थन किया। इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही थी। ये राष्ट्र का पूर्ण रूपेण पुनर्गठन करना चाहते थे और राजा की पुनर्स्थापना के इस सुअवसर से लाभ उठाकर राजतंत्र एवं पाश्चात्य देशों के ढंग की प्रशासन व्यवस्था का विकास करना चाहते थे। जापान की सन 1867 की क्रांति में इन लोगों का प्रमुख हाथ था। इसमें अभिजात वर्ग के बजाय अधिकांशतः निम्न वर्ग के समुराई ही थे और वे नवीन जापान के वास्तविक निर्माता हुए। प्राचीन व्यवस्था का बिना संघर्ष के अंत संभव न था और अभी तक सारा राष्ट्र विदेशियों को हार्दिक रूप में स्वीकार नहीं कर सका था। वस्तुतः इसी समय से देश के सुस्थिर विकास एवं परिवर्तन के इतिहास का आरंभ होता है। राजा के शासन की वर्षावधि को मेजी कहा जाता था। जापान को एक परिपाटी के अनुसार घटनाओं का काल निर्धारण शताब्दियों या राज्यों के बजाय राज्य के नामों पर होता है। यह परिपाटी जापानियों ने चीन से ग्रहण की थी। इसके अनुसार मेजी युग का आरंभ 25 जनवरी 1868 से होता है और उसकी समाप्ति 30 जुलाई 1912 को मुत्सुहितो की मृत्यु के साथ होती है। सन 1868 से 1894 के बीच, जब राष्ट्रीय नीति में विदेशी मामलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा, तब भी राष्ट्र का ध्यान मुख्य रूप से आंतरिक पुनर्गठन की ओर ही था। इस युग की प्रमुख विशेषताओं का सहज ही निम्नलिखित कुछ श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है: राजनीतिक एवं संवैधानिक विकास, विदेशों से संबंध, आर्थिक प्रगति, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं साहित्यिक परिवर्तन तथा धार्मिक व नैतिक परिवर्तन। इनमें सबसे पहले संवैधानिक और राजनीतिक परिवर्तनों का ही वर्णन करना उचित होगा। शोगुन शासन व्यवस्था की समाप्ति को केवल प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में प्रथम चरण ही कहा जा सकता है। प्रशासन का केंद्रीयकरण राज्य की पहली आवश्यकता थी। पश्चिमी देशों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए राष्ट्र का संगठित होना आवश्यक था। राष्ट्र में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का होना जरूरी था जो देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो सके और जिसका प्रयोग संगठित कार्यपालिका द्वारा हो। शोगुन तंत्र के उन्मूलन के समय राष्ट्र के केंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया गया था, परंतु यह केवल शुरुआत ही थी। इससे पूर्व चुकी लगभग 800 वर्ष से सम्राट ने अपने अधिकार को वाकफू संगठन के हाथों में सौंप रखा था। इसलिए इस समय नए शासन के अधीन प्रशासन को चलाने के लिए किसी उपयुक्त शासन तंत्र का अभाव था। सन 1868 में पहले पहल कुछ कुछ चीन की नकल पर एक प्रकार के मंत्रिमंडल या परिषद का संगठन किया गया। इसके अंतर्गत या तो पश्चिमी जागीरों के सदस्य थे या राज दरबार के संभ्रांत वर्गीय लोग थे। यह कामचलाऊ व्यवस्था तभी तक के लिए थी जब तक कि कोई इससे अधिक कारगर व्यवस्था सामने नहीं आ जाती। इसमें समुराई और राज दरबार के संभ्रांत वर्ग को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई थी। इस सभा की पहली बैठक सन 1869 में हुई और इसने पश्चिम की प्रतिनिधि युक्त शासन प्रणाली के नमूने पर जापान में एक ऐसी ही शासन प्रणाली शुरू करने का विफल प्रयत्न किया। 1868 में राजधानी का निर्माण क्योतो से हटाकर योदो में किया गया और इसका टोकियो अर्थात पूर्वी राजधानी नामकरण किया गया। इसके साथ ही शोगुन के दुर्ग प्रसाद को राजा ने अपना आवास बनाया। इस परिवर्तन से राजा के एकांतिक तथा अधिकार विहीन जीवन का अंत हुआ और शोगुन को सौंपे हुए अधिकार उसे फिर से प्राप्त हो गए। अब राजा एकांत जीवन न बिताकर प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने तथा उन्हें दर्शन देने के लिए खुली गाड़ी में सवार होकर बाहर निकलता था। राजधानी के स्थानांतरण से सम्राट भौगोलिक दृष्टि से अपने देश के केंद्र के अधिक निकट आ गया और प्रशासन का केंद्र समुद्र तट के अधिक समीप स्थापित कर उसने विदेशियों के साथ अपने निष्कपट एवं हार्दिक मैत्री का प्रदर्शन किया और विदेशियों के साथ अपने संबंध को और अधिक सरल बनाया। राजा ने एक शाही फरमान द्वारा पश्चिमी देशों के प्रति दमन नीति की भर्त्सना की तथा विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की बातों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया। राजा के अपने पद पर पुनः स्थापित होने के कुछ ही समय पश्चात राजा के मंत्रियों ने उससे भविष्य में किए जाने वाले परिवर्तनों को निर्दिष्ट करने के लिए शासन पत्र शपथ दिलाई। इस असाधारण दस्तावेज का मुक्त अनुवाद इस प्रकार किया गया है: युक्ति प्रतियुक्ति और वाद विवाद की परंपरा को सार्वभौम रूप से स्वीकार किया जाएगा तथा सभी कार्यवाहियों का निश्चय निष्पक्ष वाद विवाद द्वारा किया जाएगा। उच्च एवं निम्न वर्ग के लोगों में मतैक्य होगा और इससे सामाजिक व्यवस्था को भलीभांति कायम रखा जाएगा। यह आवश्यक है कि नागरिक एवं सैनिक शक्तियाँ एक ही संपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रित हो तथा सभी वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए और राष्ट्रीय भावनाओं को पूर्णतः संतुष्ट किया जाए। पूर्वकालीन असभ्य प्रथाओं का अंत कर दिया जाएगा और प्रकृति सुलभ निष्पक्षता तथा न्याय को सभी कार्यों का आधार स्वीकार किया जाएगा। साम्राज्य की आधारशिला स्थापित करने के लिए विश्व भर में प्रज्ञा और ज्ञान की खोज की जाएगी। इसमें प्राचीन एवं अप्रवाचीन का संयोग तथा पश्चिमी विचारों के साथ चीनी और जापानी विचारों एवं शब्दावलियों का मिश्रण मिलता है। इसमें कन्फ्यूशियस के दर्शन, संसदीय प्रशासन के पूर्वाभ्यास, राज्य के केंद्रीयकरण तथा संपूर्ण विश्व से ज्ञान संचय करने के उनके दृढ़ निश्चय के दर्शन होते हैं। राजा के शपथ ग्रहण के साथ ही प्रशासन में एक और परिवर्तन आया, जिसमें मुख्य रूप से एक राज्य परिषद का समावेश किया गया, जिसके हाथ में कुछ वर्षों तक प्रशासन का नियंत्रण रहा। इस शपथ ग्रहण के साथ ही शासन तंत्र में एक परिवर्तन यह आया था कि उसमें राज्यसभा को प्रधानता मिल गई और कुछ वर्षों के लिए शासन का नियंत्रण उसके हाथ में आ गया। शोगुन तंत्र की समाप्ति तथा नवयुग के आगमन से सामंत प्रथा अस्पष्टता एक अतीत की वस्तु हो गई थी। तोकुगावा द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण वातावरण में पहले ही इसकी शक्ति छिन्न होने लगी थी। यूरोप के देशों से रक्षा के लिए इनकी सैन्य शक्ति बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि इसमें अनुशासन तथा सामूहिक युद्ध कला की अपेक्षा योद्धाओं के व्यक्तिगत पराक्रम और प्रत्येक जागीर के गौरव को अधिक महत्व दिया जाता था। राष्ट्रीय एकरूपता तथा पुनर्गठन के संघर्ष में विकेंद्रीयकरण एक बड़ी बाधा थी। सामंत व्यवस्था के प्रधान अर्थात शोगुन की समाप्ति तथा नागरिक सेनाओं द्वारा अपने अधिकार के लिए संघर्ष के कारण सामंत व्यवस्था का कायम रहना कठिन था। सुधार आंदोलन के नेताओं ने, जिनका चयन सिद्धांततः अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील जागीरों के समुराई पद पर अधिष्ठित व्यक्तियों में से होता था, सर्वप्रथम प्राचीन व्यवस्था के परित्याग के महत्व को समझा, और जापान ने भी सामंतवाद के उन्मूलन के पक्ष में आंदोलन शुरू कर दिया। प्रत्येक जागीर में केंद्रीय प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में नागरिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार टोक्यो द्वारा नियंत्रित नौकरशाही व्यवस्था का आरंभ हुआ। सन 1869 में दक्षिण पश्चिम के चार बड़े दाइमियों ने स्थानीय प्रशासन को राजा के हाथ में सौंप दिया तथा प्रतीक स्वरूप अपने अधीनस्थ भूमि तथा प्रजा के रजिस्टर राजा के हवाले कर दिए। इसके बाद एक बड़ा ही विलक्षण दृश्य सामने आया, जिसमें हमें साम्राज्य की प्राचीन राजनिष्ठा एवं नवोदित देशभक्ति का अत्युत्तम उदाहरण मिलता है। शेष 300 के लगभग सामंतों में से अधिकांश ने स्वेच्छा से अपनी जागीरें राजा को सौंपी थी। अब न तो समुराई की सर्वोपरि निष्ठा दायमियों के प्रति रही और न ही विभिन्न विखरी जागीरों का असंबद्ध संग्रह रहा। पश्चिमी देशों के संपर्क ने एक बार फिर देशभक्ति की उस भावना को उद्बोधित किया, जिसका निर्माण तोकुगावा प्रशासन के अंतर्गत शताब्दियों तक स्थिर एकता तथा बुशीदो द्वारा विकसित राजनिष्ठा ने किया था। राष्ट्र प्रेम की इस भावना के कारण ही राजा के अधीन एक सुसंगठित प्रशासन संभव हुआ। लेकिन दायमियों ने केवल देश प्रेम की भावना से ही प्रेरित होकर अपनी जागीरें समर्पित नहीं की थी, अपितु सुधारक नेताओं के अत्यधिक दबाव के कारण बाधित होकर उन्हें ऐसा करना पड़ा था। इनमें से कईयों ने तो काफी अरसे से अपने अधिकारों का शायद ही कभी प्रयोग किया हो। सामंतवाद के इस ह्रास काल में बहुत सी जागीरों में वास्तविक सत्ता तो मंत्रियों तथा प्रतिधारकों के हाथों में थी। अतएव इस नाम मात्र के प्रभुत्व का परित्याग करने में दायमियों को कोई विशेष आपत्ति न थी। इसके अलावा केंद्रीय सरकार ने सामंती जागीरों के लिए पहले के राजस्व का 10% भाग नियत कर दिया था तथा वहां के स्थानीय प्रशासन पर किए जाने वाले व्यय के भार से उन्हें मुक्त कर दिया था। जागीरों के इस समर्पण के शीघ्र बाद ही 1871 में एक शाही फरमान जारी किया गया, जिसके द्वारा सामंतवाद का पूर्णतः अंत कर दिया गया।